सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी। सुनो सुनो
जिसको सुनकर अज्ञानी भी जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी।
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
शांति। अभी आप सभी ने गीत सुना अपने प्यारे बाप दादा की महिमा का। शांति दूत बनकर आए और शांति का पाठ पढ़ा के अव्यक्त होके चले गए। तो बाबा ने जो हम सबको शांति का पाठ पढ़ाया, अभी हम सबको ये चेक करना है कि हम उस शांति के पाठ को कितना प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी ने देखा मम्मा और बाबा के संबंध में जो भी आते थे, थोड़ी देर के लिए ही बाबा के पास आकर के दृष्टि लेते थे तो उनको बहुत सारी अनुभूतियां होती थी। शांति की अनुभूति भी होती थी और साथ साथ में और भी अनेक प्रकार की अनुभूतियां बाबा से एक सेकंड दृष्टि से हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है, इसलिए हम सबको अपने आप को हर समय बाबा से तुलना करनी पड़ेगी कि अभी हम बाबा के समान बने हैं। जैसे बाबा के संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं थोड़े समय के लिए भी आती तो वो दिव्य अनुभूतियां करती थी, तो क्या हम सभी के संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं उनको हमारे से ये शांति की अनुभूति होती है? या हम सभी जो योग कराते हैं, बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि योग करना और कराना सभी को आता है, उसमें सब होशियार है, लेकिन एक है योग करना और कराना, परंतु उस योग का प्रभाव हमारी स्थिति पर क्या है और जिनको हम योग कराते हैं उनकी स्थिति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बाबा अपने थोड़े समय के संबंध संपर्क से दृष्टि से अनुभव करा देती थी, तो क्या हमारे से ऐसे और लोगों को ये दिव्य अनुभूतियां होती हैं? अगर नहीं होती हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे योग में कमी है। पक्के योगी नहीं बने हैं या यथार्थ योगी नहीं बने हैं, या बाबा जो कहते हैं कि सदा काल के योगी बने, अल्पकाल के योगी नहीं, एक घंटे के या दो घंटे के योगी नहीं बनना है, निरंतर योगी बनना है। तो जब हम निरंतर योगी बनेंगे तभी हम ये अनुभूतियां औरों को करा सकते, क्योंकि बाबा को किसी भी समय देखते थे तो बाबा से ये भासना आती थी कि बाबा बात सुन तो रहे हैं बच्चों की, लेकिन बाबा इस शरीर से न्यारे हैं। न्यारे होकर के बाबा बच्चों की बात सुनते भी थे और उसका उत्तर भी देते थे। इस चीज का आभास भी हम सभी करते थे। तो इसी तरह से हम सभी को हर बात बाबा के इसको सामने रखते हुए चेक करनी पड़ेगी क्योंकि बाबा कहते हैं हम सबको कि बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है, सिर्फ हम कहने से तो नहीं बन जाएंगे, या किसी ने हमको समझाया, शिक्षा दी, सिर्फ उससे तो नहीं बन जाएंगे, या बाबा ने भी हम सबको शिक्षा बड़े प्यार से दी, सिर्फ सुनने से तो नहीं ना बन जाएंगे। उन शिक्षाओं को जब तक हम मनन चिंतन करके धारणा में नहीं लाएंगे, तब तक हम बाप समान नहीं बन सकते। बाबा कहती हैं मुझे ज्ञानी तू आत्माएं प्रिय है। तो अभी हम देखें कि हम ज्ञानी तू आत्मा बने हैं। एक है योगी तू आत्मा, दूसरा है ज्ञानी तू आत्मा। तो ज्ञानी तू आत्मा भी किसको कहा जाता है? ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम जो ज्ञान सुना है उसको रिपीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके उदाहरण दे करके हम सुना सकते हैं तो हम ज्ञानी बन गए, लेकिन नहीं। जो भी बाबा का ज्ञान है वो हमारे स्वरूप में कितना आया है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप कहा जाता है ना। हाँ, सिर्फ ज्ञानी ज्ञान सुनाने वाले को ही नहीं कहा जाता, ज्ञानी का अर्थ ही है जिसके स्वरूप में ज्ञान की हर बात प्रैक्टिकल में हो, जिसमें हमारा कर्म, बोल और संकल्प ये सब ज्ञान युक्त तरीके से हैं, या सिर्फ हम ज्ञान अच्छा सुना लेते हैं इसलिए हम ज्ञानी तो आत्मा है, या अपने को ही अपनी दर्जा दे दें कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ? नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा का माना ही है जो सब ज्ञान को हम अपने स्वरूप में लाएं, हमारे स्वरूप से वो प्रत्यक्ष दिखाई दे। हमारे संकल्प अगर ज्ञान युक्त हैं तो हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसको ज्ञानी तू आत्मा तो नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा के हर संकल्प समर्थ होते हैं, व्यर्थ नहीं जाते। व्यर्थ संकल्प कभी आ ही नहीं सकते जो ज्ञानी तू आत्मा होगी। अगर व्यर्थ आते हैं तो माना अभी हमने ज्ञान को अपने स्वरूप में नहीं लाया है। हमारे संकल्प हमेशा श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, जो हमारे संकल्पों का प्रभाव और अन्य आत्माओं तक भी पहुंचे, और वो भी अगर किसी अंधकार की तरफ जा रहे हैं या अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं तो उनको भी वो संकल्प, हमारे शुद्ध पावरफुल संकल्प पहुंचे और वो आत्माएं उससे बच जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्माएं कहेंगे ही उनको जिनके संकल्प समर्थ हो। और दूसरा, हमारे कर्म समर्थ हो। एक भी कर्म हमारा ऐसा न हो जो व्यर्थ के खाते में जाता हो। इसलिए कहा जाता है कि जो करो करने से पहले सोच लो, ऐसे नहीं कहते कि पहले कर लो फिर सोचो, सोच समझ के कर्म करो ऐसे कहते। तो समझ माना ज्ञान। तो इसलिए जो भी हमारे कर्म है वो कर्म भी हमारे समर्थ हो, शक्तिशाली हो, जिन कर्मों के आधार से हम अपना भी जीवन श्रेष्ठ और महान बना सके और अपने संबंध संपर्क के आधार से औरों का भी जीवन महान बना सके। इसी तरह से हम सबको अपने हर बोल, संकल्प और कर्म की जांच करनी चाहिए। बोल भी अगर ज्ञानी तो आत्मा हम हैं तो हमारे मुख से बोल ऐसी नहीं निकल सकती जो कोई ये कहे कि ये ज्ञान तो इतना ऊंचा ऊंचा सुनाते हैं परंतु इनके मुख से बोल कैसे निकलते। ये तो ज्ञानित्व आत्मा नहीं है। हम अपने को कितना भी संतुष्ट कर ले कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुना लेती हूँ, सारा बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान हमारे कर्म से प्रत्यक्ष हो, हमारे बोल से प्रत्यक्ष हो, हमारे संकल्पों से प्रत्यक्ष हो, तब कहा जाएगा कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। तो स्वयं को, स्वयं तो सर्टिफिकेट बहुत जल्दी दे देते हैं, परंतु दूसरे हमको सर्टिफिकेट दे, जो हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, वो ये सर्टिफिकेट दे कि हाँ इनके बोल भी ज्ञान युक्त हैं, इनके संकल्प भी हमेशा ज्ञान युक्त और पावरफुल रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, पवित्र रहते हैं, और इनके कर्म भी श्रेष्ठ है। तो ये सर्टिफिकेट जब औरों से हम सबको मिलेगा, उसके बाद बाबा से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए हम सबको ज्ञान को अपने स्वरूप में ला करके समर्थ आत्माएं बनना है। तो जब हमारे बोल, संकल्प और कर्म समर्थ बन जाएंगे, तो जहाँ समर्थ है वहां पर व्यर्थ नहीं आ सकता है। जैसे अज्ञान को कहा जाता है अंधकार, जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ तो नहीं ना रहते, अलग अलग समय पर होते, तो इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान, हाँ, ज्ञान माना प्रकाश और अज्ञान माना अंधकार। तो अगर व्यर्थ है संकल्प में, भूल में, कर्म में, तो कहेंगे कि अभी अंधकार है। और अगर हमारे ये बोल, कर्म और संकल्प समर्थ हैं, तभी कहेंगे कि हम प्रकाश में हैं। तो इसलिए ये बीच बीच में जो व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, खास बाबा जब पूछते हैं तो बच्चे अपने गारंटी देते हुए फलक से तो हाथ नहीं उठाते ना कि कभी हमारे में व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। बाबा कभी पूछे तो फलक से हाथ उठाएंगे सभी के, हमारे व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलते, ऐसा कह सकते? क्योंकि अभी व्यर्थ का खाता, बाबा कहते हैं, बहुत है। और वो व्यर्थ का खाता इतना जमा होता जा रहा है जो समर्थ का खाता बनने ही नहीं देता है। इसलिए अभी हम सबको, क्योंकि समय कम है, उस समय को देखते हुए ये अपने ऊपर, एक एक अपने संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर जब अटेंशन होगा, तभी हम इस व्यर्थ से बच सकेंगे। तो व्यर्थ से जितना जितना हम बचते जाएंगे, समर्थ बनते जाएंगे, तभी हम कहेंगे ना ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अगर स्वरूप में आया ही नहीं है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हम कैसे कहला सकते? तो ये हम सबको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हर एक्टिविटी पर, हर अपने कर्म पर, हर संकल्प पर और हर बोल पर, तभी फिर हमारा योग भी सही रीति से बाबा के साथ जुड़ सकता है, है ना। अभी ज्यादातर बच्चों की यही रिपोर्ट रहती है कि निरंतर योग हमारा नहीं रहता है, कोशिश करते हैं परंतु फिर भी योग जितना होना चाहिए पावरफुल, वो नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? यही छोटे छोटे जो कारण है, जो व्यर्थ हमारा समय जाता है, व्यर्थ संकल्प होते हैं, व्यर्थ के भूल निकलते हैं और वो ध्यान में भी नहीं आते, बोल देंगे लेकिन वो समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये क्या व्यर्थ बोल दिया। अगर कोई कहेगा भी कि ये आपने बोला, ये ठीक नहीं बोला, इस तरह से ब्रह्मा कुमार या कुमारी को बोलना नहीं चाहिए, तो क्या दलील दे देंगे कि ये है ही ऐसी आत्मा ना, ये ऐसे कर्म करती है, बदलती नहीं है, अपना सुधार ही नहीं करती है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ जाता है। तो चलो वो तो अपनी गलती कर रहा है, अपना सुधार नहीं कर रहा है, तो हम भी उसके साथ साथ अपनी गलती का, अपने व्यर्थ का खाता जमा करें, ये सही है? उन आत्मा को छोड़ भी नहीं सकते हैं कि चलो छोड़ो, जैसा है चले, अपना जैसे चले, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उसके कारण अपनी स्थिति को बिगाड़े या अपना व्यर्थ का खाता जमा करें। दूसरे की रक्षा करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए या दूसरे को सहयोग देने के लिए, अवस्था बनाने के लिए हमें अपना पहले ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं उसके कारण हमारा भी व्यर्थ का खाता जमा तो नहीं हो रहा है। पिछले इतने खाते बना चुके हैं हम सभी पिछले जन्मों में, जो चुकतु करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये खाते सभी योग बल से ही चुकतु होने हैं, योग अग्नि से ही खत्म होते हैं। और योग के लिए अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमारा निरंतर योग नहीं लग रहा है, जैसा योग चाहिए पावरफुल हमारा योग नहीं है। तो अगर वो योग भी नहीं है और व्यर्थ का खाता भी जमा होता जा रहा है, तो हम पिछला भी अभी खत्म नहीं कर पाए और अभी भी अगर व्यर्थ का ही खाता जमा करते रहेंगे तो भला अंत तक भी वो खाता चुकतु हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए अभी हम सबको अन्य को न देखते हुए अपने को देखना है कि हमारे से कोई ऐसी व्यर्थ के संकल्प, बोल या कर्म न हो जिससे हमारा व्यर्थ का खाता बने। अपने को बचाते हुए दूसरे को बचाना है, ना कि अपने को भी उनके साथ साथ में और नीचे गिराते जाए या अपना खाता जमा करते जाए। ऐसा नहीं है, अभी समय है समर्थ का खाता जमा करने का। क्योंकि जैसे कई बच्चे तो शुरू से आए और वो अपनी मेहनत भी किए और बहुत सेवा भी किए, लेकिन अभी अभी जो लास्ट में आ रही हैं आत्माएं, एक तो समय कम मिला और दूसरा अगर इस तरह से अलबेले हो करके चलेंगे तो भला हम बाबा की जो आशाएं हैं उसको कभी पूरा कर सकते? कभी नहीं कर सकते ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, बाप समान बनो तो हम इकट्ठे अपने घर चलेंगे। तो हम बाप समान कैसे बनेंगे? जब बाबा को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। बाबा ने अपना समर्पण किया तो कैसा समर्पण किया? तन मन धन जो कुछ भी था सब समर्पण किया। आप कहेंगे कि वो तो अभी और बच्चे भी करते हैं। हाँ करते हैं, परंतु अब चेक करें कि क्या बाबा के समान हमने समर्पण किया। बाबा ने जो कुछ भी समर्पण किया फिर उसको कभी भी बोल से भी नहीं कहा कि ये मेरा है। तन के लिए भी बाबा हमेशा कहते थे ये तो बाबा का रथ है, बाबा ने ये तन लिया हुआ है, उसके लिए भी नहीं कहते थे ये मेरा है। और धन जो बाबा ने दिया वो उसी समय सब समर्पित कर दिया, बहनों के आगे, दादियों के आगे, मम्मा के आगे सब समर्पित कर दिया। फिर कभी कहा कि मैंने इतना धन दिया? कहा कभी? नहीं ना। तो माना संकल्प में भी ये नहीं आता कि ये मेरा है। इतना बड़ा यज्ञ चला रहे थे, कभी बाबा ने कहा ये मेरा यज्ञ है? बाबा का यज्ञ, बाबा का ये तन है, ये सब कुछ बाबा का है, बाबा के बच्चे हैं। तो उसको कहा जाता है संपूर्ण समर्पण जिसमें मेरापन न हो। तो बाबा तो अव्यक्त मुरली में यहाँ तक कहे हैं कि अगर आपका भी उस चीज में या अपने शरीर में या जो भी आपने समर्पण किया उसमें जरा भी अगर किसी भी समय संकल्प चला कि ये मेरा है, तो वो उसको संपूर्ण समर्पण नहीं कहेंगे। तो एक तो हुई अपनी बात, और दूसरी बात कि अगर कोई दूसरा भी कहता है कि ये इनका है, तो भी जरूर कहीं ना कहीं समर्पण में कमी है। तो ना आपके मुख से निकले, ना मन में संकल्प आए कि ये मेरा है, और अन्य आत्माओं के भी मन में ये संकल्प ना आए कि ये इनका है। जब सब कुछ ऐसे दिल से बाबा ने, पूरी तरह से बाबा ने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, तो ना अन्य आत्माओं, माना उनके कोई भी रिश्तेदार संबंधियों ने भी ये नहीं कहा कि ये आपका है तो आप इसमें से हमको दो, या मेरा भी अधिकार है इस पर, ऐसा किसी ने नहीं कहा ना। तो इसलिए हम सबको भी ये देखना है कि हमने ऐसा संपूर्ण समर्पण बाबा की तरह से किया है। हम लोग सभी कह देते ना, हम लोग समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो वो देखें कि संपूर्ण रीति से हम समर्पित हैं या कभी कभी मेरा पन आ जाता है, मैं पन आ जाता है। तो अगर मेरा या मैं पन आया तो माना अभी संपूर्ण समर्पण नहीं। इसलिए फिर जो जो ये कमियां हमारी बाबा बताते हैं, तो उस कमियों को दूर करने का विशेष हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए। तो ये विशेष हम सबको ध्यान दे करके अपना पुरुषार्थ करना है। बाकी कुछ भाइयों ने कहा था कि आप अनुभव सुनाइए, तो अनुभव की बात तो ये है कि हम लोग जब बाबा के ज्ञान में आए तो उस समय तो बहुत कम सेंटर्स थे, और जो भी उस समय समर्पित हुए, माना पहले तो दादियां थी जो यज्ञ में समर्पित हुई, और उन दादियों को जब 14 साल तपस्या करा के बाबा ने बाहर भेजा सेवा के लिए, फिर उनके द्वारा जो हम लोग निकले, तो वो हुए दूसरा ग्रुप। तो इसलिए अब दादियों ने जैसे जो किया उसी रीति से फिर जो आगे उनके द्वारा निकले, उन्होंने भी उनको फॉलो करते हुए एक बार अगर संकल्प ले लिया कि हमको सेवा में निकलना है, तो चाहे कितने भी विघ्न बाधाएं आई या क्या क्या भी सहन करना पड़ा, लेकिन ये कभी संकल्प में नहीं आया किसी के कि अच्छा चलो इतना सहन कर रहे तो छोड़ दो, उसी दुनिया में चले जाओ, इनकी बात मान लो, बाबा को छोड़ दो, कभी आ नहीं सकता था ये संकल्प। आजकल तो थोड़ी थोड़ी भी परीक्षाएं आ जाएंगी, सेंटर्स में ही अगर कुछ थोड़ी बहुत भी कमी रह गई, कुछ अभाव हुआ जरा भी, तो कहेंगे हम तो जाते हैं घर। लेकिन जो सुख सुविधाएं अभी हैं वो शुरू में थी क्या? जो त्याग तपस्या करके जो सेवा पहले हुई है वो तो अभी नहीं है। तो पहले ये सब साधन थे ही नहीं, सिर्फ साधना की तरफ ही हर एक का ध्यान रहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करें और ज्ञान का मनन चिंतन चलें। हम सच बताएं कि हम लोग जब ज्ञान में आए तो ये व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं वो हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी, माना आते ही नहीं थे वो, बस बाबा ही बाबा बुद्धि में समाया रहता था, और जैसे कि कोई ने डोरी खींच रखी हो, इस रीति से वो योग हमेशा, चाहे हम कहीं चल रहे हैं, चाहे कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, किसी से अगर बात भी कर रहे हैं, तो लगता था कि बाबा के पास ही है। अब आ गया कोई तो निमित्त मात्र उससे बात कर रहे हैं, लेकिन योग बाबा से रहता था। अगर कोर्स करने वाले भी कोई आए तो उनको समझाते हुए भी बाबा उस समय मुरली में ये कहते थे कि जब किसी को ज्ञान सुनाते हो तो चेक करो कि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो के उसको आत्मा समझ करके हम ज्ञान सुना रहे हैं कि हम ये बाबा ने जो सुनाया हम वो इनको ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसी स्थिति में रह के ज्ञान सुनाओ, अभिमान में आके नहीं। तो वो भी चेकिंग करते थे। तो जो मुरली थी उसका दिन भर या तो मनन चिंतन करना और या तो योग में बैठना, जो समय मिलता था वो योग में ही जाता था। और अभी क्या देखने में आता है, सेवा का शौक तो रहता है लेकिन ना योग का शौक रहता है और ना ही मनन चिंतन का शौक रहता है। ये दोनों की तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए फिर छोटी छोटी बातें अगर कोई आ भी जाती है, अभी तो बहुत सुख सुविधाएं सेंटरों पर हैं, साधन हैं, वो होते हुए भी अगर बस थोड़ा सा कोई अभाव हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो बस गए, वो बाबा कौन है वो भी भूल जाएगा, ज्ञान इतना ऊंचा है जिस दूसरों को सुनाते थे वो एक सेकंड में गायब हो जाएगा। फिर यही कि नहीं मुझे तो बस घर जाना है, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं चल सकती, ऐसे कहते हैं ना। तो वो क्यों है, क्योंकि ज्ञान और योग का बल नहीं। अगर ज्ञान और योग का दोनों बल हो तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। और इसलिए शुरू शुरू के जो बाबा के बच्चे निकले उनको कभी भी, जब से चले तब से अभी तक ऐसा संकल्प एक बार भी नहीं आया होगा कि हम चलो ऐसे दुख कष्ट होते हैं तो घर चले चलो, ऐसा नहीं होता था। इसलिए अभी हम सबको अपनी स्थिति पक्की करनी है। बाबा ने मेरे को, जैसे हम तो पंजाब से हैं वैसे, लेकिन बाबा ने पहले तो मम्मा जब वहां गए थे पंजाब में तो मम्मा ने क्लास कराई कन्याओं की, वहां बहुत सारी कन्याएं निकली थी ना, और कन्याएं ही कन्याएं, इससे भी बड़ा हॉल था उसमें भरी हुई थी। तो मम्मा ने पूछा कि अच्छा इतनी शिव शक्ति सेना तैयार है और अभी बहुत सारा फील्ड पड़ा हुआ है, सारा ही फील्ड पड़ा हुआ है अभी सेवा करने का, तो कौन कौन तैयार है शिव शक्तियां बाहर जाने के लिए? तो कोई ने हाथ ही नहीं उठाया, क्योंकि हमारी प्यारी चंद्रमणि दादी जी का इतना स्नेह मिलता था, इतने उनके हर बोल में शक्ति समाई हुई रहती थी, उनको छोड़ करके कोई बाहर जाना पसंद ही नहीं करते थे। इसलिए फिर कोई ने हाथ नहीं उठाया, ऐसे नहीं कि नहीं जा सकते, परंतु दादी के स्नेह में। तो फिर मामा ने दोबारा पूछा, फिर भी नहीं कोई ने हाथ उठाया। फिर मामा ने कहा कि देखो जो शिकारी कुत्ते होते हैं, मालिक के हाथ में उसकी रस्सी रहती है, लेकिन अगर उनको कोई शिकार दिखाई दे दिया तो मालिक से रस्सी छुड़ा के भी भाग जाता है। तो इसी तरह से अभी तुम लोग को मम्मा भेज रही है शिकार करने के लिए, बड़ों बड़ों का शिकार करने के लिए, और तुम लोग चंद्रमणि दादी का मुंह देख रही हो। माना बहुत कड़ी मुरली मम्मा ने चलाई, उसके बाद भी हाथ नहीं उठाए। तो मैं उस समय छोटी थी सबसे, मैंने हाथ उठाया, मेरे दिल में इतना दुख हुआ कि मम्मा कह रही है और हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने हाथ उठाया, फिर मम्मा ने पास में बुला के मेरे को कहा कि ठीक है तुमको कहीं भी भेजेंगे तो जाने को तैयार हैं। हमने कहा, बोली अपनी मम्मी को बुलाइए उनसे छुट्टी लेंगे। तो मैंने कहा मेरी मम्मा तो आप ही हैं, अब मैं और किससे छुट्टी लूंगी? तो नहीं, फिर भी बुलाना। तो मतलब आए और उन्होंने छुट्टी भी दे दी, क्योंकि मम्मा की जो अंदर से तीव्र प्रेरणा थी तो वो उनको बल दी ना, तो इसलिए छुट्टी मिल गई। तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि अगर तुमको शेरों का शिकार करने के लिए भेज दूं, शेरों के सामने भेज दूं तो डरोगी तो नहीं, जाओगी? हमने कहा हाँ जाएंगे, शेरों के पास भेज देंगे तो भी हम जाएंगे। हालांकि बुद्धि में ये नहीं था कि कौन से शेरों के लिए मम्मा कह रही है ना, अभी इतना तो पता नहीं था, किन शेरों के लिए मम्मा ने कहा, तो भी हमने कह दिया कि मम्मा भेज रही है तो आप जहां भी भेज देंगे हम जाएंगे। तो अब मम्मा का राज तो बाद में समझ में आया, जब बाबा ने फिर मेरे को, मम्मा ने तो इधर यूपी में भेजा, तो पहले पहले मैं कानपुर में आई। तो कानपुर में सिर्फ 10-15 दिन ठहरी और फिर इधर बिहार में सेंटर खुला धनबाद में, तो वहां उसके उद्घाटन के लिए हम लोग गए और मैं वहीं रह गई। तो एक साल वहां हुआ सेवा करते हुए, तो बाबा का पत्र आया कि बच्ची तुम्हें बनारस जाना है, जो काम महारथी नहीं कर सके वो काम तुमको वहां जाकर के करना है, महारथियों की लाइन में आना है। ये बाबा का लेटर लिखा हुआ आया, जबकि वहां के जो निमित्त थे सेंटर खोलने के, वो आने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बाबा ने लेटर भी लिखा, फिर फोन भी किया कि तुरंत बच्ची को भेजो। और जब बाबा का आ गया बुलावा तो फिर तो रुक नहीं सकते ना, तो हम बनारस में आ गए। अब बनारस में आए तो हम जहां भी, भाई पंजाब में भी बहुत अच्छी सेवा थी, सब जगह देखते थे, बहुत भीड़ थी। बनारस में आए तो उस समय सेवा कुछ थी नहीं, मतलब 2-4 स्टूडेंट थे और बाकी कुछ भी नहीं रहता था। उसके बाद हम वहां सेवा शुरू किए तो धीरे धीरे थोड़े बढ़ने लगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है तीर्थ स्थान है, तो तीर्थ स्थानों पर सेवा करना थोड़ा कठिन कार्य होता है, मेहनत लेता है। तो बाबा को मैंने लिखा कि बाबा यहाँ इतना मेहनत करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, भाषण भी करते हैं, कहाँ कहाँ भी जाते हैं, सेवा तो बढ़ती नहीं है, जिज्ञासु बढ़ते नहीं है, ये लिखा। तो बाबा ने तुरंत उत्तर दिया कि बच्ची ये बनारस का सेंटर मैंने जिज्ञासुओं के लिए खोला ही नहीं, ये तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए, शंकराचार्यों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, विद्वत मंडली के लिए ये सेंटर खुला है, उनकी सेवा तुम्हें करनी है, जिज्ञासु आते हैं नहीं आते हैं उसका तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तो भगवान का आदेश कि उस पर ध्यान नहीं दो, कोई आता है आए, नहीं आता है नहीं आए, लेकिन तुम्हें जो सर्विस अर्थ भेजा है वही सेवा करनी है। फिर हमने भी फिर ऐसे ही किया जैसे बाबा ने कहा, फिर उन लोग की सेवा करनी शुरू की। तो जब वहाँ स्टूडेंट नहीं है तो आप समझ सकते होंगे कि वहाँ की कंडीशन आर्थिक भी क्या होगी, तो एकदम बेगरी का पार्ट था। फिर भी बाबा ने कहा उन लोग की सेवा करनी, तो सेवा करने में कुछ खर्चा तो होता है, उनको बुलाएंगे, उनको बुलाने का साधन गाड़ी कुछ तो करके उनको ले आएंगे, सम्मान से लाना पड़ता है। तो इस तरह से मतलब जो भी आता था कोई और भंडारी में आके डाला, या उस समय उतना भंडारी सिस्टम नहीं था, ऐसे दे के गए, तो बस ये नहीं आता था कि आज ये आया तो हम बना के ये सब खा ले, ये था कि अच्छा आज इतना आया है तो आज एक महात्मा को बुला के लाएंगे। पहले तो हम लोग जब शुरू किए उनके पास जाना, उस समय तो मतलब ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनना नहीं चाहते थे वो लोग, सन्यासी लोग, और अगर कहीं सुन भी लिया, देख लिया ब्रह्मा कुमारी को, तो गाली देना शुरू करते थे, ऐसा उस समय वातावरण था, कट्टर दुश्मन थे ये सब लोग। तो ऐसे समय में सेवा करना वो तो बाबा का ही काम था, सेवा कराना है ना। तो बाबा ने कहा कि नहीं यही करना है, तो फिर जाते थे उनके पास। तो अब जाते थे, बहुत बुरी भली बातें बोलते थे, इसलिए कि ये लोग दोबारा न आए। परंतु बाबा ने कहा था कि देखो तुम बच्चे उनको ज्ञान से नहीं जीत सकते हो, धारणा से जीत होगी। तो इसलिए शायद बाबा ने भेजा होगा। तो अब जो कितना भी वो क्या भी बोलते थे, लेकिन हम शांत स्वरूप होके मुस्कुराते हुए उनसे वो गाली भी देते थे तो मुस्कुराते रहे होते सुन लेते थे, सुन के फिर चले जाते, लेकिन जाते समय एक कोई ज्ञान की बात उनको बोल देते थे। फिर उसके बाद कोई कोई त्योहार आते या कुछ भी ऐसा मिलता समय, तो बहाने बहाने से हम लोग जाते थे, आज क्यों आए बोलते थे आज ना ये त्योहार था ना इसलिए आपके पास आए, आज राखी थी आपको राखी बांधने के लिए आए। तो पहले तो राखी भी नहीं बांधवाते थे। तो ऐसे करके फिर कभी कोई किताब नई निकली तो आज ये किताब निकली थी वो आपको देने आए, माना बहाने बना बना के हम लोग उनके पास जाते थे। तो वो सोचते थे कि ये फिर आ जाते हैं, इतना कुछ बोलते हैं और ये कैसे मुस्कराते हुए फिर से आते। तो आखिर में ऐसे जाते जाते उनको सुनाते, टोली देते, ज्ञान की एक एक पॉइंट सुनाते सुनाते, तो उनको सच में धारणा की बात को ही देख करके झुकना पड़ा कि गायन तो हमारा है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग, लेकिन हम तो इतना क्रोध करते हैं और ये तो शांत में मुस्कराते रहते हैं। और फिर से हमारे पास आते हैं बड़े प्रेम से, उसी रिस्पेक्ट से आते हैं, तो जो हमारे में धारणा होनी चाहिए वो इनमें है। तो इन लोग के पीछे कोई शक्ति है, उनको ऐसा अनुभव हुआ, तब वो झुकने लगे, फिर बड़े प्यार से राखी भी बंधवाने लगे और सुनने भी लगे। फिर देखा कि अब ऐसे ये थोड़ा मोल्ड हुए हैं, तो उनको बाबा से पूछा, बाबा इनको आश्रम पर बुलाए। तो आश्रम पर सारे ये प्रदर्शनी के जो चित्र है वो सब लगे हुए थे, तो उसमें सर्वव्यापी का, गीता के भगवान का, सारी पॉइंट्स थी। तो बाबा ने कहा हाँ उनको निमंत्रण दे के आश्रम पर लाओ, तो लेकिन दो दो को तीन तीन को नहीं लाना, एक एक को लाओ, क्योंकि अगर दो तीन को लाएंगे एक कौआ होगा तो वो उनको भी नहीं सुनने देगा, इसलिए एक एक को अकेले अकेले को लाओ। अब अकेला भी आएगा, उनके शिष्य तो आएंगे साथ में, तो ऐसे एक एक को निमंत्रण दे करके लाते थे और सारी ज्ञान की पॉइंट सुनाते थे, बाबा की याद में रह के कि ये आए हैं सुनने के लिए, बाबा आप ही सुनाना। तो उनको सब पॉइंट सुनाते थे, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है या सर्वव्यापी नहीं है, ये सब सुनाते थे। और मुंह से वो कुछ बोल नहीं सकते थे, माना बाबा जैसे उनका मुंह बंद करते थे, कहा तो वो इतना बोलते थे और कहा फिर सारी पॉइंट सुना दी उनको, फिर भी कुछ नहीं, बहुत खुश होकर के सुनते थे। और फिर उनको लास्ट में हम लोग संदली पर बिठाते थे कि अब आप भी कुछ सुनाइए। तो शुरू शुरू में तो सोचा कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन वो बाबा अपना काम कराना होता है उनको, वो ही कराते थे। तो वो इतनी महिमा करके जाती थी कि अरे हमने तो क्या सुना था, यहाँ तो बहुत अच्छा सुनाया जाता है, माना बहुत महिमा करके जाती रही। तो ऐसे ही करते करते जब फिर उनके समझ में ये बातें कुछ आने लगी और फिर संपर्क में, संबंध में, अच्छे स्नेह में आ गए, तो उस समय बाबा तो अव्यक्त हो गए थे। अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा इनकी इतनी सेवा की है तो हमारी इच्छा है कि बाबा के घर तक उनको लाए। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे वो तैयार बैठे हैं, आप सिर्फ जाके फूंक मार दो और वो उड़ते हुए यहाँ चले आएंगे। तो हमने यही अनुभव किया, बाबा के पास यहाँ जो डायरेक्शन मिला उस अनुसार जाके हम लोग निमंत्रण देने लगे, सब तैयार हो आने के लिए। तो सबसे पहला जो संत सम्मेलन हुआ था वो बनारस की तरफ से 80-85 लोग आए थे, मुख्य मुख्य धुरंधर लोग जो थे, बड़े बड़े, तो वो सबको छांट छांट करके हम लोग यहाँ लाए थे और उस समय यहाँ बहुत भव्य रीति से उनका सम्मेलन हुआ था और यहाँ आकर के फिर वो लोग और प्रभावित हुए, क्योंकि जो उनके अंदर में गलत धारणाएं थी कि ये लोग विदेश का वो बनाती हैं, क्रिश्चियन बना देती हैं, विदेश का धर्म यहाँ फैलाती हैं, हिंदू धर्म को नष्ट करती हैं, ये सब उनके मन में था। और यहाँ जब आए वो लोग सम्मेलन में तो विदेशी भाई बहने भी बहुत थे, तो उनसे भी उन्होंने कईयों से मुलाकात की, पूछा, प्रश्न पूछे, तो उन्होंने अपना ये ज्ञान सुनाया, तो उन लोगों को ये लगा और सुनाया उन्होंने सभा में कि हम लोगों की गलत धारणा थी, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि नहीं, ये हिंदू को क्रिश्चियन नहीं बनाती है, लेकिन क्रिश्चियन को हिंदू जरूर बना रही। तो ऐसा करके उन्होंने सुनाया। फिर ऐसे और भी बहुत सारी बातें, अभी टाइम तो नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा माना, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। दादी जी से मिले हाँ संदेश का तो कहने का मतलब कि जब इन लोगों ने यहाँ इतने प्रभावित हुए तो इन्होंने जाकर के वहाँ पर संत समाज में बहुत सेवा की, जहाँ के भी वो थे, जहाँ जहाँ जाके मिलते थे ये लोग, चाहे अयोध्या के लोग हों, चाहे हरिद्वार के लोग हों, चाहे जहाँ के भी, सबको इन लोगों ने यहाँ जाके संदेश दिया यहाँ से कि ये संस्था बहुत ऊंची है, ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, हम लोग इनको जो नेग्लेक्ट करते हैं इनको साथ लेकर हम लोग को कार्य करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। तो उसका प्रमाण हमको मिला कि हम लोग ये सोचे कि अब अयोध्या के लोगों को भी ले जाएं। तो दूसरी बार जब हम उनको निमंत्रण देने के लिए गए तो वहां के जो मुख्य महंत है नृत्य गोपाल दास जी, तो उनके पास जब गए, पहले भी जाते थे और कई बार उनके पास गए थे, लेकिन उस दिन जो गए तो उनके पास शिष्य लोग बैठे थे, हम भी पीछे जाके बैठे, तो कहे कि वहां नहीं बैठी, आप यहाँ आइए, वाना अपनी गद्दी पर ही जो गद्दी बिछा के बैठे थे, तो कहे वहां नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आइए, तो वही बैठा है अपनी गद्दी पर। फिर बोले कि आज मैं उलाहना दूंगा आपको। मैंने कहा दीजिए जो भी उलाहना देना है। तो कह रहे कि सब लोग को लेके गई और हम लोग को छोड़ दिया। मैंने कहा कि आज आपको निमंत्रण देने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि इतने सारे वो लोग थे उधर के, इसलिए सोचा कि आपको अलग से यहाँ के सब लोगों को इकट्ठे लेके जाएंगे। बोले हाँ हाँ हम सब तैयार हैं, हमको सब समाचार मिला है, वहाँ ऐसा सम्मेलन हुआ बहुत अच्छा हुआ और हम लोग को भी लेके जाओ। तो माना डेट तय हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो मंदिर मस्जिद नहीं गिरा दी गई थी तो उसके कारण वही दिन उसमें पड़ गए, तो उनका फिर ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। दोबारा बनाया तो फिर वो बरसी मनाने लग गए अपनी, तो फिर भी वो नहीं हो पाया उनका। तो कहने का मतलब कि वही संत लोग अयोध्या के पहले विरोध किए थे एक बार, जो बात बाबा के अनुभव ट्रांस की कह रहे, तो उस समय इन लोगों ने, हम लोग वहाँ प्रदर्शनी किए फैजाबाद में और 7 दिन का कार्यक्रम भी रखा। तो ये सेवा करते हुए फिर ये सोचा कि हम लोग अयोध्या में भी, क्योंकि 5-6 किलोमीटर दूर का अंतर है फैजाबाद अयोध्या में, तो सोचा उधर भी हम लोग अपना रैली निकालते हैं। तो उन लोगों से हम लोग जा करके कहे, सब विरोध कर रहे थे उस समय, ये बाद की बात है जब सम्मेलन से प्रभावित होकर के फिर उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले बहुत विरोध किए थे, कहे आप लोग निकाल नहीं सकती हो, अगर आप लोग निकालेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े ना होते हैं बहुत क्रोधी और एक दो को मार भी डालते हैं, क्या कर देंगे वो कुछ पता नहीं है, ऐसे टाइप के होते हैं। तो डराया कि आप लोग निकालना नहीं, नहीं तो बुरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, उनको कह के हम लोग चले गए। फिर ये हुआ कि क्या किया जाए, तो हुआ कि बाबा से पूछा जाए। तो फिर बाबा के पास गई, बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा ऐसा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और अयोध्या में करने का हम लोग का वो था विचार और है भी, तो अब ऐसा ऐसा वो लोग कह रहे हैं तो क्या करें, करें या न करें। तो बाबा ने कहा कि करना है, वो तो कागज के शेर हैं, वो क्या करेंगे, इसलिए डरना नहीं है उनसे, वो कागज के शेर हैं, कुछ नहीं करेंगे, वो आप लोग को निकालना है। तो रात को ये संदेश मिला और सवेरे फिर सब लोग उस समय रात को योग भी किए, योग करके सवेरे बस सब लोग शांति में फिर हम लोग अपना निकाले। अब निकाले भी तो ऐसे नहीं कि चुपचाप निकाल लिए, जिन जिन्होंने मना किया था उनको जा जा करके ऊपर उनके घर में उनको कहते थे कि महात्मा जी स्वामी जी हमारा वो रैली यात्रा आ रही है आप देखिए, माना वो ये ना कहे कि चोरी से निकाल लिए है ना, तो उनको कहते थे कि आप आइए आप देखिए, तो ना ना बाबा मैं नहीं देखूंगा, अच्छा आप नीचे मत जाइए अपनी खिड़की से देख लीजिए, तो उनको वहां से दिखाया कि इसमें क्या बुराई है आप देखिए। फिर उसके बाद दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास गए और एक जो था तो उन सब में से लड़ाकू है, उसको भयंकरानंद भी कहते, नाम उनका दूसरा है लेकिन उनको भयंकरानंद भी कहते हैं, और आप उनकी आवाज सुनेंगे ना लगेगा माइक ही फट जाएगा, अभी इतना जोर जोर से बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के। तो उसने भी यही डराया था, तो वो जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं तो वो उधर से अपने आश्रम से आ रहे थे, हम लोग को दिखाई दिया कि ये आ रहे, तो हमने गुप्ता भाई साहब थे उनको बोला कि भाई साहब वो आ रहे हैं आप उनको भी रोक के दिखा दीजिए। तो उनको जैसे ही जाके कहा तो कहा ना बाबा मैं नहीं जाऊंगा वहां देखने के लिए, लोग कहेंगे तुम ही हो जो इन लोगों को दिए होंगे परमिशन। तो फिर उल्टे पैर वो बेचारा डर के मारे वापिस हो गए, कहां हम लोग को डरा रहे थे कि निकालना मत बुरा हो जाएगा, और कहां देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो उल्टे पैर बड़ी जल्दी जल्दी चल के अपने आश्रम की तरफ चले गए। तो भाई साहब बोले अच्छा ठीक है मैं आपके आश्रम में लेके आ रहा हूँ, तो क्या किया डर के मारे जाके अपना गेट ही बंद कर लिए। अब बताइए सच में जो बाबा ने कहा कि ये कागज के शेर हैं कुछ नहीं करेंगे, आप लोग शेरनी शक्तियां हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है अब जाएं, तो वही हम लोगों ने देखा। तो बाद में तो फिर जब यहाँ से सब लोग गए तो उसके बाद तो वो सब पानी पानी हो गए, और फिर कई बार वो बनारस में आए भी, नहीं तो गोपाल दास तो अपने आश्रम में बनारस में भी 3-4 बार आए और भोजन भी करके गए। माना ये तो 85-86 में हुआ था, यही संदेश ही था ना ये, नहीं नहीं हाँ वतन में ही बाबा से ये पूछा मैंने, तो बाबा ने कहा कि नहीं तुम लोग शेरनी शक्तियां हो इसलिए शिव शक्ति पांडव सेना के आगे वो कुछ नहीं है, वो कागज के शेर है, तो आप लोग को डरना नहीं है निकालना है। तो ये संदेश की बात थी, और देखा तो फिर वैसा ही निकला है ना। तो ऐसे बहुत सारे संदेश हैं, अब वो तो समय समय पर बाबा अपना चमत्कार दिखाते रहते न। अच्छा अभी बाद में फिर कभी सुनेंगे है ना जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस तरह से बाबा ने जो शुरू से सेवा कराई ना यहाँ पर अव्यक्त बाप दादा से, क्योंकि पहले मेरे पास हैंड्स भी नहीं थे तो सेंटर एक ही था बनारस, तो बाबा ने कहा कि बाहर बाहर सेंटर खोलो, तो मैंने कहा ठीक है, जाके शुरू किया और झटपट से 5-6 सेंटर खुल गए। फिर मैं बाबा के पास आई, जब अभी एक तो बाबा के पास, तो बाबा से कहा बाबा आपने कहा सेंटर खोलो सेंटर तो फटाफट खुलते जा रहे, मेरे पास हैंड्स तो है ही नहीं, मैं अकेली कैसे करूंगी। तो बाबा ने कहा वो भी हो जाएगा। तो अब वो भी हो जाएगा जो ऐसे करके बाबा ने आशीर्वाद दिया। और हम गए वापस, उसके बाद में खूब बहनें निकलनी शुरू हो गई। ये बाबा का ही तो वरदान है ना। तो इतनी सारी बहनें निकले आई, जो फिर हम क्या करते थे, कुछ समय एक जगह सेवा किए, और जब एक साल में वो थोड़ा क्लास जम जाता, फिर जो बहनें थी उनको वहां निवेद बना जाते, फिर आगे दूसरी जगह खोलते। इसी तरह से करते करते जैसे जैसे आगे खुलते जा रहे थे, वैसे वैसे बहनें फिर निकलती जा रही थी। उसके बाद फिर बाबा ने कहां तक, नेपाल तक पहुंचा दिया। यूपी में सेवा करते 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 नेपाल तक पहुंचा दिया। फिर उधर से भी बहुत सारी बहनें निकली, और अभी मतलब कहां एक ही सेंटर भी ठीक से नहीं चलता था, कहां फिर बाबा ने सेवा करा के तो अभी 150-250 सेवा केंद्र है जो बाबा की कृपा से खुले। और अभी बहुत सारी बहनें भी हैं जो अपने सेंटरों के कार्य को देखती हैं। सब जगह 2-3-4 बहनें ऐसे हैं, और इसलिए बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के वरदानों से ही शुरू से हम लोग पलते आए हैं और अभी भी पल रहे हैं। इसी तरह से जो बाबा की हर बात पर निश्चय रख करके चलते हैं, तो बाबा उनको हर पल मदद करते हैं। और ऐसा शुरू से हम लोगों ने ये अनुभव किया कि जो संकल्प किया और बाबा वो झट से पूरा करते थे, माना सेवा अर्थ जो भी संकल्प किए। तो इस तरह से सेवा करते करते विस्तार हुआ। तो जो बाबा ने कहा था कि वो स्टूडेंट का ध्यान नहीं दो, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा जब शुरू हो गई, इधर भाई बहने भी बढ़ने लग गए, अपने आप सेंटर भी खुलने लग गए। तो कहने का मतलब कि किस विधि से वहां से सेवा बाबा को शुरू करानी थी, वो उन्होंने साकार बाबा ने शुरू कराई। और फिर हम लोग पत्र में लिखते रहते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे। सम्मेलन भी बहुत सारे बनारस में विद्वत सम्मेलन हुए, तो उसमें जगदीश भाई और सब महारथी भाई दादियां पहुंचती थी और वो सम्मेलन होते थे। तो छोटे छोटे सम्मेलन वहां तो हुए कई बार, लेकिन यहाँ फिर वो पहली बार हुआ, फिर दूसरी बार भी लाए, और फिर तो और जगह से, अब तो बहुत जगह से साधु संत लोग सभी आते हैं, और सभी बाबा के आगे तो सबको झुकना ही है। और वो सभी अभी झुकते हैं, और निर्माणता से बहुत स्नेह है उन लोगों का हम लोगों से, और निमंत्रण भी देते रहते हैं, अपने प्रोग्राम्स में बुलाते रहते हैं, और वो ही सेवा करते रहते हैं, बाबा का ज्ञान किसी न किसी रीति से सुनाते हैं, है ना। ऐसी सेवाएं। ओम शांति।